ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हमको बहुत खुशी है क्योंकि पांडव भवन के हिस्ट्री हॉल में आप सबसे मुलाकात करने का मौका मिला है। तो इसलिए बाबा को, ड्रामा को और खास छोटे लाल भाई को थैंक्स, क्योंकि इस हिस्ट्री हॉल में पांव रखते ही बहुत स्मृतियां इमर्ज हो जाती हैं। जब से हम बाबा के बने, जन्म लिया, अभी तक कितनी बार साकार बाबा से और कितनी बार अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात हुई, वो सब स्मृतियां इमर्ज हो जाती। तो इसलिए आप सब मधुबन में रहते हो तो जब भी मौका मिले तो जरूर कुछ समय इसी हिस्ट्री हॉल में समय देना चाहिए। तो आपको भी भले साकार में बाबा से नहीं मिले हैं तो भी साकार भी, अव्यक्त भी साकार में अनुभव हो सकता है अगर हम दिल से बाबा को इस रूप से याद करते हैं तो। तो आज की मुरली सभी ने सुनी, सबने सुना, ध्यान से सुना है। तो मैं पूछूं, आज की मुरली में क्या स्लोगन था? आज बाबा ने क्या कहा? भरपूर रहना है तो दुआई देना है, दुआई लेना है। तो दुआई लेना और देने के पहले दुआ किसको कहा जाता है जानते हैं? भक्ति मार्ग में भी ये शब्द सुना है, परंतु भक्ति मार्ग में तो सिर्फ मांगते थे। पर क्या होता है दुआई, क्या होती है आशीर्वाद, क्या होता है, कैसे देना होता है? अभी बाबा ने हम सबको स्पष्ट बताया है। वास्तव में मुख से कुछ भी नहीं बोले तो भी हम दृष्टि से भी दुआएं दे सकते हैं, संकल्प से भी दे सकते हैं, सिर्फ वाइब्रेशन से भी दे सकते हैं, सम्मुख न होते हुए भी किसी आत्मा को हम दुआएं पहुंचा सकते। परंतु दुआएं देने का मतलब कि किसी आत्मा को जो ना उम्मीद हो गए हो उसको जीवन में उम्मीदवार बनाना, किसी आत्मा को हिम्मतहीन हो गए हैं ऐसी आत्मा को हिम्मत भरना। कभी कभी कोई दिल शिकस्त हो जाते हैं ना, आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, तो ऐसे आत्माओं में वो शक्ति भरना। भले कितने भी गिरे हुए आत्मा हो, उस आत्मा के बारे में हमारे मन में शुभ भावना, शुभ कामना सदैव रहना, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो अभी अगर हम दुआओं के भंडारा भरपूर रखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दुआई देना है या लेना है? लेंगे नहीं तो कैसे देंगे? पहले तो भरने के लिए लेना पड़ेगा ना। और बाबा ने क्या मना किया है? मांगना नहीं है, लेना भी है सबसे दुआई, तभी तो हमारा भंडारा भरेगा। परंतु मांग करके नहीं लेना है। बाबा भी बार बार कहते हैं ना कि आशीर्वाद नहीं मांगो, परंतु लेने के पात्र बनाना है अपने को। जितना हम लेने के अपने को पात्र बनाएंगे, दुआएं आप ही मिलती रहेंगी और भंडारा भरपूर होता जाएगा। और जिसके दिल में दुआओं का भंडारा भरपूर हो जाएगा, वो तो देना है वो सोचने का भी जरूरत नहीं, दूसरों को उससे मिलता ही रहेगा। पहले अगर हमारा भंडारा ही भरपूर नहीं है तो दूसरों को मिलेगा कैसे? हमको ही इच्छा रहेंगे ना दूसरों से लेना है। तो दुआएं भी हम कहाँ कहाँ से लेना होता है? सबसे पहले तो बाबा से, सबसे पहले तो बाबा से, और उसके बाद दूसरा जो भी बाबा ने निमित्त बनाया है बड़ों से, जो बने बाबा ने जिसको निमित्त रखा है उन आत्माओं के दिल से दुआएं। और तीसरा जिसकी हम सेवा करते हैं, जहां पर भी सेवा के निमित्त है, उन सभी साथियों से, उन सभी आत्माओं से दुआएं चाहिए। और चौथा सारे परिवार से, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा परिवार है ना। और पांचवा सारे विश्व की आत्माओं से। ऐसा कोई भी आत्मा ही न हो जिसके दिल में हमारे लिए बद दुआ हो। तो पांचों ही सब प्रकार से, सब तरफ से हमको दुआएं भरनी है। और सबसे पहले बाबा से मांगने के बिना पात्र बनना है, अपने को बनाना है। तो उसके लिए कौन सी बातें हम ध्यान में रखें? जो हम सिर्फ दुआओं से ही पलते रहे। कई बार बाबा पूछते ना, आप अपने आप से पूछो कि यह ब्राह्मण जीवन हम पुरुषार्थ के आधार से चल रहे हैं या दुआओं के आधार से? जवाब नहीं देना अभी, उसके बारे में थोड़ा विचार करना। जब से हम ज्ञान में आए हैं, हम पुरुषार्थ के आधार से चल रहे हैं या दुआओं के आधार से? कितनी परसेंटेज पुरुषार्थ है और कितनी परसेंटेज दुआएं हैं? तो इससे मालूम पड़ जाएगा कि आपके भंडारा कितना भरपूर है। तो सबसे पहले हम इस पर विचार करते हैं कि बाबा से अगर दुआएं लेनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा। तो जैसे गीत है ना, दुआएं ले लो माँ बाप की। तो माँ बाप से दुआएं लेने के लिए सबसे पहले अपने आप को आज्ञाकारी बच्चा बनाना है। अज्ञान काल में भी लौकिक माँ बाप किन बच्चों को दुआएं देते? जो आज्ञाकारी होते हैं। कई बार माँ बाप कहते ना कि गिनती करने के लिए चार बच्चे हैं, परंतु सचमुच पूछो तो एक ही बच्चा है जो आज्ञाकारी है, माँ बाप के आज्ञा पर चलने वाले। तो जो कदम कदम पर बाबा के हर आज्ञाओं पर चलते, ओबीडियंट रहते हैं, उसके लिए बिना मांगे माँ बाप के दिल से दुआएं मिल जाती। सबसे पहली बात। और दूसरी बात, ऑफकोर्स जो आज्ञाकारी होंगे उसके मुख में कौन सा शब्द सदैव याद रहेगा? हाँ जी। इसलिए मम्मा की याद आती है ना, मम्मा बाबा के दिल को कैसे जीती, मम्मा मम्मा कैसे बनी। जब से बाबा के बनी तो कभी भी ना नहीं किया था, हाँ जी, जी बाबा, जी बाबा। तो हाँ जी करके करके बाबा के दिल को जीत लिया। तो हमको भी आज्ञाकारी नंबर वन बनना है। और दूसरी बात, उसके लिए दिल से दुआएं निकलते हैं जो सच्चाई से चलते, सच्चे दिल पर साहेब राजी। बाबा को और कुछ नहीं चाहिए। माताओं को ये सोचने की जरूरत भी नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम ये नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर दिल साफ है तो साहेब राजी होकर के दुआओं का बरसात आपके ऊपर बरसाएगा। सच्चे दिल। अंदर बाहर एक। उसी दिन भी बाबा बता रहे थे ना, कोई भी बात को छिपाना नहीं है, जैसे वैसे सुना देना। कई बार सच सुनाने के लिए लोग डरते हैं, इसलिए कि हमको पनिशमेंट मिलेगा, परंतु वास्तव में सच सुनाने से पनिशमेंट माफ हो जाएगा। यू नो, साकार बाबा के समय भी कई बार हम दादियों के द्वारा अनुभव सुना है ना, कि जो कोई सच आके बाबा को बताते थे उनको ज्यादा प्यार करता था बाबा, क्योंकि बाबा को वो बच्चे की दिल पसंद आती थी। तो इसलिए बाबा के दिल की दुआएं उन बच्चों को मिलेगा जो सच्चाई है। और तीसरी बात, दुआएं लेने के लिए दूसरों को सुख देना है। कोई भी आत्मा हो, अगर हम सुख देते हैं सदी, कभी भी मन वचन कर्म से दुख नहीं। अगर कभी दुख कभी सुख देते हैं तो फिर भी दुआएं नहीं मिलेगा। जितना भी वो हमको दुख दे दे, परंतु हमारे से सदैव सुख ही देते रहे हमारे तरफ से, तो ऑटोमेटिकली बाबा भी सुखदाता है, तो हम बच्चे भी ऐसे सबको सुखदेव बनकर के सुख देते रहेंगे, तो बाबा को भी बहुत अच्छा लगेगा ऐसे बच्चे को देख करके। और चौथी बात है कि सेवा में, सेवा तो हम सब करते हैं, परंतु कौन से विशेष गुण सेवा में होना चाहिए जिसके आधार से बाबा से सबसे भी दुआएं मिल जाती, निस्वार्थ सेवा। तो इसलिए कहते हैं ना कि एक हाथ जो करे दूसरा हाथ को पता ना चले, गुप्त दान महापुण्यम कहा जाता है। ऐसे निस्वार्थ, जितना हम निस्वार्थ सेवा करते रहेंगे उतनी दुआएं, दिल की दुआएं मिलती रहेंगी। जो भी सेवा करे दिल से, इसलिए स्लोगन है ना, दिल से सेवा करो तो दुआओं का भंडारा खुल जाएगा, आपका दुआओं का भंडारा भर जाएगा। दिल से सेवा करने का मतलब ये नहीं कि हमको जब इच्छा है तब करे, नहीं, जो भी सेवा मिले, जब भी मिले, हम अपना भाग्य समझ करके करें। और दूसरी बात ये भी है कि अगर हम बाबा से और बड़ों से दुआएं लेना है तो हमको विश्वास पात्र भी बनना होता है। बड़ों को हमारे बारे में कोई चिंता न हो, बड़ों को हमारे से हम जितना निश्चिंत रखेंगे उतनी उनकी दिल से हमको दुआएं मिलेंगी, यानी उसके लिए विश्वास पात्र बनना है। तो हमारे जीवन में इतनी सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, जो हम विश्वास पात्र बन सके, तो ऑटोमेटिकली सबके दिल से दुआएं मिलेंगी। और खास सहयोग तो हम सभी देते हैं, परंतु समय पर बिना बोले हम कोई भी बाबा के कार्य में सहयोगी बन जाते हैं, तो उन आत्मों के लिए बाबा की दिल की दुआओं की बरसात हो जाती, क्योंकि समय पर बिना बोले देवता बन करके हमने अपनी अंगुली दी। एक होता है दान और दूसरा होता है पुण्य। दान और पुण्य में क्या अंतर है? दान तो दुनिया में भी बहुत करते हैं, परंतु पुण्य की दुआएं ज्यादा है। पुण्य माना अपना भी सुख आराम को त्याग करके दूसरी आत्माओं के सुख के लिए अपना समय देना। तो इसलिए हम कहां पढ़ रहे थे, दुआई जो हम लेते हैं वो इस जन्म में काम में आता है, परंतु जो हम पुण्य करते हैं ना, वो हमारे अगले जन्म में हमारे खाते में जमा हो जाता है। आज भी बाबा ने कहा ना, सत्युग में क्यों आत्माओं को कर्म भोग नहीं होता है, क्योंकि वहां पुण्य आत्माएं होते हैं, कोई पाप नहीं करते। तो अभी हमारा जो पुण्य का कर्म है, अभी भी हमको दुआई दिलाते हैं और भविष्य में भी हमको पुण्यात्मा बनाते हैं। इसलिए हमको दान के साथ पुण्य भी करना है। दान उसको कहा जाता है जो हमारे पास जो कुछ है, हम अपने लिए जितना चाहिए हमने यूज कर लिया, बाकी जो बचा ना उसको हमने दूसरों की सेवा में सफल कर लिया, चलो उसका भी आपको एवजा मिल जाएगा। परंतु हम अपने लिए तो कोई सैक्रिफाइस नहीं किया ना, परंतु पुण्य माना अपने जीवन को कभी कभी हम सैक्रिफाइस करके दूसरों के हित के लिए हम काम करते। जैसे साकार बाबा, जैसे दादिया अपनी नींद, अपनी खाना सब कुछ त्याग करके दूसरों की सेवा के लिए समय देते हैं ना, वो सिर्फ दान नहीं, वो पुण्य में जमा हो जाता है। तो जब ऐसी हमारी धारणा हो जाती तो दुआओं का खाता बढ़ता जाता है। और सबसे और एक बात है कि दिल से दुआई लेने के लिए हम कोई भी हमारे से कैसा भी व्यवहार करे, परंतु हर आत्मा के लिए, जैसे बाबा कहते ना कि अपकारी पर भी उपकार, निंदा करने वालों के ऊपर भी हम निंदा को महिमा समझ के उस आत्मा के लिए भी अगर हम अपने मन में शुभ भावना रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आज नहीं तो कल उसके दिल से भी दुआएं मिलेंगे। तो पुरुषार्थ हमको यही करना है और कुछ नहीं, सबके दिल से, बड़ों से, अज्ञानियों से, ज्ञानियों से, साथियों से, सबसे दुआएं। और सिंपल वे दुआ को समझना माना कि समझो आपने कोई भी कार्य किया, समय पर किसी को सहयोग दिया, उसने कहा कि बहुत धन्यवाद, थैंक यू, माना उसका जो दिल से शब्द निकला ना वही आपके दिल की दुआ ही है। किसी को प्यासी को थोड़ा पानी पिलाया, जो भूखे को थोड़ा खाना खिलाया, तो उसी समय उसको जो खुशी हुई ना, तो उसके दिल से निकला कि बहुत बहुत भगवान आपके ऊपर मेहरबानी करे, ऐसा कुछ भी शब्द उसके दिल से निकलता है ना, वही हमारे लिए दुआएं हैं। तो हमको ये चेक करना है कि ब्राह्मण जीवन में हम ऐसे कितनी दुआएं हम जमा करते तो जितना हमारे अंदर जमा होता जाता है उतना दूसरों को ऑटोमेटिकली मिलता जाता है। तो देना माना हमको ये नहीं सोचना है कि मेरे को देना है, तो अगर हम सोचते ना मैं दुआ दे रही हूं मुझे देना है, माना हम नहीं दे रहे हैं। जैसे सूरज है, सूरज कभी नहीं सोचता है कि मैं रोशनी दे रहा हूं, बस सूरज अपना काम करता है, सवेरे उदय हो जाता है तो लोगों को रोशनी मिल जाती। तो अगर हमारे अंदर दुआओं का भंडारा भरपूर है तो जो भी आएंगे कुछ न कुछ प्राप्ति। दुआई देने का मतलब कि आपके संपर्क में, आपके संबंध में, आपके सामने कोई भी आवे, उन आत्माओं को कुछ न कुछ प्राप्ति हो जाए, उनको कुछ न कुछ मिला मेरे को। उसमें भी खास करके अगर आत्माओं को ऐसा अनुभव होता है कि मेरे को जो चाहिए था वही मेरे को मिला, तो फिर आपको वो दाता समझेंगे। तो इसलिए हमको ये नहीं सोचना है इसको देना है, अभी दुआई देनी है, ये कोई प्रोग्राम नहीं बनाना है। जैसे मंदिर में जाते हैं ना, मूर्ति जड़ होता है, वो कोई प्रोग्राम नहीं बनाते, वो सदैव वहां पर खड़ा है, भगत उसके सामने जाके खड़े हो जाते, उनको दुआई मिल जाती। यू नो भावना से आती है ना, तो हम वही चैतन्य मूर्ति है। तो सिर्फ हमको अपनी भरपूर अवस्था, हमको सब कुछ है, तो दुआई देने के लिए सबसे पहली धारणा है इच्छा मात्रम अविद्या। तो हमारे अंदर कोई भी प्रकार की चाहिए चाहना की इच्छा ना हो। अगर हमारे अंदर ही चाहना है तो क्या हम सामने जो आएंगे उसकी चाहना पूरी कर सकेंगे? देखो ये वंडरफुल है ना, भक्ति मार्ग में जड़ चित्रों के सामने लोग चले जाते हैं और वो कुछ बोलता नहीं है, परंतु लोगों को लगता है कि आज हमको दुआई मिल गई इस मूर्ति से, हमारे देव से, देवी से। तो माना प्रैक्टिकल उन्होंने पिछले जन्म में इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति को धारण किया। ना कल भी बाबा ने मुरली में कहा ना, लोभ क्या करता है? हमारे पास दो जोड़ी जुटता है फिर भी इच्छा होती है कि तीसरा चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा जितना ज्यादा रखेंगे उतना फिर आपको मरने के समय वही याद आएगा। इसलिए जो यूज करते उतना ही रखे, ज्यादा रखने से बुद्धि उधर चला जाता है। और इच्छा ऐसा है ना, एक के एक पूरे होंगी तो दूसरी निकलेगा, दूसरा फिर तीसरा। और दुआई देना माना भरपूर संतुष्ट आत्मा। संतुष्ट आत्मा का दूसरा अर्थ है इच्छा मात्रम अविद्या। और ये लॉ है ड्रामा में, जो आपको चाहिए ना वो तब आपको मिलेगा जब आपको चाहिए कि इच्छा बिल्कुल संकल्प ना हो। जब आपके बुद्धि से ये संकल्प निकल जाएगा ना तभी आपको वो मिलेगा। इसलिए हमको ऐसे महसूस करना चाहिए कि बस हमको सब कुछ मिल गया। कहते भी है ना, एक मिला तो सारी दुनिया मिल गई। तो चेक करना है अगर हमारे में सूक्ष्म में भी हमको मान मिले, हमको शान मिले, हमको थोड़ा महिमा मिले, तो वो भी चाहना हमको दुआएं देने में मदद नहीं करेगा। और दूसरा विशेष हमारे संकल्प, संकल्प की क्वालिटी कैसे होनी चाहिए? तो दुआई देने वाले का संकल्प सदैव श्रेष्ठ। कोई आत्मा के लिए कभी भी परचिंतन परदर्शन बिल्कुल न हो। हमारे संकल्प की श्रेष्ठता माना सर्व आत्माओं के लिए और सदा काल के लिए शुभ भावना और शुभ कामना। वो आत्मा कैसे भी हो परंतु हमारे अंदर संकल्प, क्योंकि संकल्प से क्या होता है, फीलिंग, और फीलिंग से वाइब्रेशन। यू नो संकल्प और फीलिंग वृत्ति बनाता है, वृत्ति से वाइब्रेशन होता है। तो दुआई क्या है? वाइब्रेशन ही तो है। मुख से आप कुछ भी नहीं बोलो परंतु उस आत्मा को फीलिंग तो होता है ना। तो इसलिए हम संकल्पों के ऊपर अटेंशन रखें कि कभी भी हमारे संकल्पों में, बाबा क्यों कहता है, व्यर्थ भी न हो, परचिंतन परदर्शन, नकारात्मक संकल्प। तो अगर हमारी समझो अभी एक बकेट में दूध है, उसमें एक बूंद की पॉइजन डाल दो, सारी दूध पीने लायक नहीं है ना। समझो हमारे मन में सबके लिए शुभ भावना है परंतु कुछ एक दो के लिए नहीं है, फिर भी हमारा मन हमारी दिल दुआ देने के पात्र नहीं होंगे, क्योंकि पात्र ही खराब हो गया, पॉइजन हो गया। भले हम समझेंगे पर उसको पहुंचेगा नहीं। तो इसलिए हमारी दिल एकदम साफ और मन में कोई भी और प्रकार का संकल्प नहीं। और तीसरी बात है, दुआ ये दिल की बात है ना, तो हमारी दिल बहुत बड़ी दिल, उदार दिल, ऐसा नहीं कि 10 दिन दुआएं देंगे 11वां दिन बददुआ देना चालू कर देंगे तो वो नहीं चलेगा ना। दुआई मतलब कि हम बेहद वो रेस्पॉन्ड करे ना करे, हमारे पास है ही वो ना, तो वो ही हमारे दिल से निकलता रहेगा। तो इसलिए कभी भी दिल छोटी नहीं, उसके लिए उदार दिल। दादी कहते ना, बड़ी दिल, उदार दिल और दिल में दया भाव, तो दूसरों के लिए दुआएं निकलती। और चौथी बात है कि हम सदैव हरेक के गुण विशेषता देखने की आदत हो। अगर हम किसी की कमी को देखते हैं तो फिर हम उस आत्मा के लिए हमारे दिल से दुआएं नहीं निकलता। सबकी विशेषता देखने की आदत हो। बाबा इसलिए बार बार हमको याद दिलाते, हरेक की विशेषता देखो, हंस के समान अच्छे गुण ले। तो अगर हम हरेक की विशेषता देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो फिर वो अप्रिसिएशन ही दुआ है। अप्रिसिएशन के ऑपोजिट क्या होता है? क्रिटिकल। किसी को क्रिटिसाइज करते हैं ना, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमको ऐसा नहीं करना था, ये अच्छा नहीं किया, चलो कुछ तो किया ना, जिसकी शक्ति जितना है उसी अनुसार ही करेंगे ना। चलो आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं किया तो भी उसको कहेंगे बहुत अच्छा किया, तो दोबारा करने की उसको उमंग उत्साह आएगा ना। तो जो अप्रिसिएशन, वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन, वो तब निकलेगा जब हम दूसरों की विशेषता को देखेंगे। तो अगर हम अवगुण को देखते हैं तो हम दुआएं नहीं दे सकते। तो ये हमको चेक करना है। एक तरफ तो हम चाहते हैं हम भरपूर रहे, परंतु अवगुण देखने का या अवगुण सोचने की आदत है, तो हमारी बुद्धि ऑलरेडी दिव्य नहीं रही ना, मिक्स हो गया, तो उससे दूसरों को नहीं मिल सकता। और एक विशेष बात है कि हमको अपने स्वमान में सदैव रहना है। जो सदैव अपने स्वमान में रहते हैं, दूसरों को सम्मान देते हैं। जो खुद स्वमान में नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? दूसरों को अपमान करेंगे ना, भले मुख से नहीं परंतु मन से भी, वो भी बददुआएं हैं। तो इसके लिए हमको अपने स्वमान की सीट पर सदैव स्थित रहना है। स्वमान की सीट पर स्थित रहने का मतलब कि जैसे बाबा मुझे देखता है, मैं जो हूं जैसा हूं वैसे ही मुझे अपने को देखना है। भले दूसरे मेरे को कैसा देखता है, मेरे को उसी नजर से मेरे को नहीं देखना। बाबा ने जिस प्रकार से मुझे देखा, बाबा की दृष्टि मेरे पर जैसा पड़ी वैसे मैं अपने को देखूं। तो ऑफकोर्स हरेक के अंदर गुण भी है और अवगुण भी है। तो स्वमान की सीट पर स्थित रहना माना बाबा ने जो टाइटल दिया है, बाबा ने जो स्वमान दिया है उसको ही सीट बना करके चलना। तो उसमें ना अभिमान आएगा ना अपमान लगेगा। तो जो सदैव स्वमान की सीट पर रहेंगे तो वो खुद को, अपने आप को दुआई देंगे। पहले तो हम अपने आप को दुआई देंगे ना, माना अपनी विशेषता को जान करके उस विशेषता को भगवान की देन समझ करके ईश्वरीय सेवा में उसको उपयोग करेंगे। समझो अगर हम अपनी विशेषता को जान करके उसको भगवान के देन समझ करके यूज करते हैं, तो उस द्वारा दूसरों को लिफ्ट मिल जाता है। हम उसको गिफ्ट समझ के यूज किया ना, उसका प्रैक्टिकल प्रूफ क्या है, दूसरों को उससे लिफ्ट मिल जाती। तो फिर भी हम मैंने किया वो अपमान नहीं आएगा, ये मेरा नहीं, ये तो ईश्वरीय देन है। इसलिए बाबा कहते ना कि अपनी विशेषता को पहले बाबा के आगे समर्पण करो, फिर बाबा से लेकर के उसको परमात्म प्रसाद समझ करके सबको बांटो। जैसे अभी देखो दुकान से आप फल फूल खरीद करते हैं, फिर उसको मंदिर में ले जाते हैं, मूर्ति के सामने रखते हैं, वो प्रसाद बन जाता है, फिर घर में जाके प्रसाद के रूप से सबको बांटते हैं ना, उसका वैल्यू बढ़ जाती। तो ऐसे हम अपनी विशेषता को जाने और उसको ईश्वर के आगे अर्पण करें, फिर वापस ईश्वर हमको प्रसाद समझ के देंगे, उसको बांटेंगे, तो कभी अभी अपमान नहीं आएगा। तो जो स्वमान में सदैव रहते हैं ना, वो भरपूर रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। जो जब स्वमान नहीं होता है, क्यों? क्योंकि हम अपने आप को दूसरों से बेट करते हैं। देहाभिमान में होते हैं तो यही होता है ना, अपनी कमी को नहीं देखते, दूसरों की कमी को देखते हैं। तो स्वमान में रहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम अपनी विशेषता को जानते, नहीं, अपनी कमी को भी जानते, अपनी कमी को भी जानते हैं और उसको निकालने का पुरुषार्थ भी करेंगे, और साथ में अपनी विशेषता को जान करके उसको ईश्वरीय देन समझ के ईश्वरीय सेवा में यूज करेंगे। तो इसलिए ना अभिमान होगा ना स्वमान की कमी होगी। कई बार ऐसा होता है ना, क्यों स्वमान की कमी हो जाती? क्योंकि दूसरों की अवगुण देखते हैं, अपनी विशेषता देखते हैं, तो दूसरों को हम स्वमान नहीं देते, या तो फिर उल्टा हो जाता है, हम अपनी कमी को देखते हैं, दूसरों की विशेषता को देखते हैं, तो उसके ऊपर प्रभावित हो जाते। तो दुआएं देने के लिए ये विशेष धारणा चाहिए, न किसी के ऊपर प्रभावित होना है, न किसी के लिए घृणा आना है। अगर किसी के लिए घृणा है तो भी हमारे दिल से दुआएं नहीं निकलता। किसी के ऊपर प्रभावित हो जाएंगे तो बुद्धि उसके ऊपर झुक जाता है ना, तो फिर दुआएं नहीं निकल सकता, क्योंकि बुद्धि में वो ताकत नहीं। तो ये बहुत सूक्ष्म बात है कि गुण भी देखना है, प्रभावित भी नहीं होना है, अवगुण जानना है, मालूम है, परंतु उसे घृणा नहीं। तो इसके लिए पहले अपने आप को ऐसे चलाना चाहिए ना, तो मैं अपनी भी विशेषता को जानूं और अपनी कमी को भी जानूं, तो हमको किसी के गुणों पर हम प्रभावित भी नहीं होंगे और किसी के अवगुण को देख करके हमको नफरत भी नहीं आएगा। तो ऑटोमेटिकली हमारी दिल से हरेक के लिए सदैव अप्रिसिएशन ही निकलता जाता है। समझ में आया ना? तो ये चेक करना है, अगर किसी से भी घृणा है तो हम दुआई देने के पात्र नहीं है। तो इसलिए ये भी एक मनसा सेवा है ना, दुआई देना और दुआई लेना। तो अपने मन को बहुत शुद्ध रखना है और दिल को बहुत साफ रखना है। समझो, अगर हम ऐसे जैसे आज बाबा ने कहा, दुआई देते भी है और दुआई लेते भी है, तो हम इसी कार्य में बिजी रहते हैं, तो उसकी क्या निशानी होंगी, उसका जीवन कैसा होगा? दुआई लेते भी है और देते भी है, तो उसके अंदर सबसे पहले जीवन में चमत्कार, जैसे मिरेकल्स ऑफ गॉड, असंभव बात संभव हो जाता है, यू नो, मुश्किल सहज हो जाता है। पूछेंगे ये तो बस बाबा की दुआएं हैं, सिर्फ बाबा की नहीं, देते भी है और लेते भी है। यू नो ये कोई जादू नहीं है, इसको चमत्कार ही कहेंगे, परंतु ये दुआओं का कमाल है। यू नो दुआएं देना और लेना, उसमें से दूसरी एक निशानी होंगी कि दादी ने एक बार कहा था कि ऐसी आत्माओं को बाबा उनके दिल को दृष्टि देगा, क्योंकि उनकी दिल इतनी साफ है, वो बाबा के दिल तख्त नशीन है, तो बाबा की दृष्टि उनके दिल पर पड़ेगा। तो आप सोचो उसका क्या अनुभव होगा। और जो दिल दुआई देते भी है और लेते भी है, ऐसी आत्माओं की शिकल कैसे होंगे, चमकता हुआ ना, जैसे प्रकाशमणि दादी हमको याद है सदैव कहती थी, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मैं दुआओं की झोली इतना भर दूं, जब भी मैं धर्मराज के सामने जाऊं ना तो हमको सिर झुकाना नहीं पड़े, मेरी झोली इतना भरा हुआ है दुआओं से। तो हमको बस यही और कुछ पुरुषार्थ नहीं करना है, झोली हरेक से सुख देने का, कोई न प्रकार के कोई न कोई प्रकार की प्राप्ति, यू नो कोई न कोई प्रकार से सबसे सुख मिले। कभी कभी हम कहते हैं ना सेवा करने का चांस नहीं मिलता है, दुआएं कैसे लेंगे, सेवा तो कई प्रकार से है, बीमारी भी सेवा कर सकते हैं, यू नो कई बार हम कंप्लेन कर देते हैं ना, बाबा कहते सेवा करने से तो दुआएं मिलेंगी, हमको तो मौका नहीं मिलता है सेवा करने का, परंतु तन से नहीं तो मन से करो, मन से नहीं तो धन से करो, मन से नहीं तो वाचा से, वाचा नहीं तो कर्मणा से, कई प्रकार से कर सकते हैं ना। तो इसलिए अब तो टाइम हो रहा है, परंतु मेरे को ये कहना था कि हरेक हम अपने आप से पूछे, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि जब से हम ज्ञान में आए अभी तक हम कैसे चल रहे हैं, दुआओं से चल रहे हैं या अपने पुरुषार्थ से। अगर हम दुआओं से चल रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हम बाबा हमको चला रहा है, हम नहीं चल रहे हैं। जैसे बच्चा माँ बाप के गोदी में है, माँ बाप चला रहे हैं, तो अपने को ऐसा लगता है कि बाबा चला रहा है, पुरुषार्थ माना हम चल रहे हैं। तो हम चल रहे हैं तो चलते का नाम गाड़ी, कभी चलेंगे कभी रुकेंगे। तो दुआएं लेना और देना माना उड़ती कला, यू नो उसको जैसे कि उड़ने की पंख मिल जाती, अपना पुरुषार्थ नहीं, प्रेस बटन, ऑटोमेटिकली उड़ती कला का अनुभव होता रहेगा। तो ऐसे हम बाबा के दुआओं के पात्र बन करके अपने जीवन से अभी सेवा ही है, बाबा कहते ना कि चलन और चेहरे से और संकल्प वाइब्रेशन से, बस यही चेक करना है कि हर एक आत्मा के लिए अच्छी भावना, शुभ भावना, उसके लिए पहले हम शुभ चिंतन अपने लिए और सबके लिए शुभ चिंतन, बस एक ही स्लोगन याद रखो, अपने के लिए शुभ चिंतन, दूसरों के लिए शुभ चिंतन, तो ऑटोमेटिकली आपको दुआएं भी मिलेंगे और आप सबको दुआएं भी देंगे। पर सवेरे सवेरे उठ के पहले पहले अपने आप को दुआई दो, अपने आप को दुआई दो। तो जो सवेरे सवेरे उठ के अपने आप को दुआई देते हैं, माना शुभ चिंतन करने का संकल्प करते हैं, फिर सारा दिन दूसरों के प्रति शुभ चिंतक, तो वही दुआई है, वो दवा बन जाती है बीमारी में। दादी जानकी सदैव कहते ना, मेरी दवाई बीमारी का परसेंटेज यह है, 50% दवाई, 45% योगा, 5% दवाई। तो बीमारी में भी जो हमको जो मदद करता है ना, दवा के समान वो दुआ है। तो इसलिए बीमारी आने तक वेट नहीं करे, अब इसे जमा करते जाए तो फिर वो सूली से कांटा हो जाएगा। बस यही हम, जैसे आज बाबा ने कहा तो हमारा ब्राह्मण जीवन मौजों का जीवन बन जाएगा, मूंझने का नहीं। दुआओं से चलेंगे और दुआओं से ओम शांति।
प्रभु का ध्यान।